श्रुत संब्रूतया चिरं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा अनिमित्त निमित्तेन, कर्म फल की इच्छा के बिना, स्वधर्मेण, अपने अपने निर्धारित कार्यों के करने से, अमल आत्मना, शुद्ध मन से, तीव्रया उत्कट गंभीर, मई मुझको भक्त्या भक्ति से, च तथा श्रुत श्रवण संब्रूतया से युक्त, चिरम दीर्घकाल तक। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभिचरणालीन भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान ने कहा यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वो मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद ही प्रारंभ होता है। यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ नहीं होता कि वह अपराधी है। जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यहां तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। मनुष्य को इस तरह कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वह कलमश से प्रभावित ना हो। यद्यपि कमल के फूल का साचर्य जल के साथ होता है कि आत्मना। यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में से मुक्त हो सकता है। जिस तरह यह भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहां व्याख्या की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्ति पर कर्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। भागवत में अन्य स्थान में कहा गया है, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्तव्य करने होते, किंतु ऐसे कर्तव्य की पूर्णता तभी होंगी जब भगवान श्री हरि ऐसे कर्मों से तुष्ट हो। उदाहरणार्थ अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसकी युद्ध की पूर्णता श्री कृष्ण की तुष्टि से आकी जानी थी। कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे और जब उसने भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध किया तो यह उसके भक्ति में कर्तव्य की पूर्णता थी। दूसरी ओर जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध करना नहीं चाह रहा था तो अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन में पूर्ण बनना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होगा। अनिमित्त निमित्तेन, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यज्ञ अर्थात कर्मणत्र, यज्ञ अथवा विष्णु की तुष्टि, अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। अतः यहां पर कपिल मुनि द्वारा इसकी भी संस्तुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग करके भव बंधन को छिन्न किया जा सकता है। ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करने से विकसित होती है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्तियों का शुभारंभ है। मनुष्य भी चाहे कि भक्तों की संगति करे और उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलापों, उनके अंतर्ध्यान आदेश आदि के विषय में सुने। श्रुति अथवा शास्त्र दो तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए, दूसरे जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए। भगवद गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवत दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों का बारंबार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करे। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कलमश से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कलमश स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव कम हो जाते हैं और जब लोभ या तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य सतगुण पद को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भाव बंधन से मुक्ति है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री भगवान वाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संवृतया चिरम। असाधु साधुता दायन नाति नीचो तारक हान मुंच कदाचिन मां प्रेमणा हृत कंठयो स्वर। तो सर्वप्रथम समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदना करके सभी के कृपा आशीर्वाद से भगवान कपिल देव के उपदेश का हम श्रवण कर रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान अध्याय 25 भक्ति की महिमा से प्रारंभ भगवान कपिल देव की है। 26 में सांख्य और इस भौतिक प्रकृति का विश्लेषणात्मक वर्णन किस प्रकार से भगवान के द्वारा ये सृजन होता है और वह भौतिक प्रकृति और जीव के बीच का जो संबंध है उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इस जगत का ज्ञान, जगत के साथ जीव का संबंध और जीव कैसे इस जगत में बद्ध रहता है, कैसे मुक्त होता है, लगभग यह विषय के वर्णन इस अध्याय में किए गए। प्रथम 5 श्लोकों में मूलतः जीव का इस जगत से कोई संबंध नहीं है। जीव का नित्य संबंध श्री कृष्ण के साथ है, भगवान के साथ है और भगवान के साथ संबंध होने के कारण वो नित्य मुक्त है। परंतु इस प्रकृति के संसर्ग में आकर प्रमुख रूप से संसार के साथ अपने संबंध को बनाने के कारण वह बद्ध कहलाता है। यह प्रथम 5 श्लोकों में बताया गया, लगभग पिछले कुछ श्लोकों में इस बात का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद आज के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी की टीका से प्रारंभ किया, वहां पर भी इसी बात का वर्णन किया। संसार में रहने से कोई बद्ध नहीं होता है। यहां पर दृष्टांत स्वयं भगवान का दिया गया, भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है, तो भगवान के महान भक्त जो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध का साक्षात्कार किए वे भी इस जगत से प्रभावित नहीं होते। जगत के क्लेश, जगत के कष्ट 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित कब होते हैं तो बताया जाता है कि जब आप इस जगत से अपने संबंध को बना लेते हैं, या सरल भाषा में कहा जाए प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। प्रकृति के लिए जो ममत्व भावना है, ये जगत मेरा है, मैं यह शरीर हूं, यहां से प्रारंभ करके वह सबसे प्रमुख बांधता है इस संसार में। और कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है तो उसी विषय का वर्णन किया गया। तो लगभग 3 पहले 5 श्लोकों में वह वर्णन किया गया, फिर 6वें श्लोक से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो पहले सांख्य योग विधि को बतलाया गया, 6 से 11 तक, 12 से 16 तक ज्ञान विधि को बतलाया गया। सांख्य में योग विधि में 18 गुणों का वर्णन किए हैं, जिन गुणों को हम अपने जीवन में लाते हैं तो क्रमशः व्यक्ति मुक्त हो सकता है। फिर ज्ञान का बतलाया कि किस तरह से सर्वत्र भगवान का दर्शन करने से जीव संसार के 3 गुणों के प्रभाव से बच सकता है। तो सांख्य मतलब ज्ञान और योग दोनों विधि बतलाई भगवान कपिल देव ने, परंतु माता देवती संतुष्ट नहीं हुई और फिर उन्होंने लगभग 17, 18, 19, 20 चार श्लोकों में जो वर्णन किया है, जिसको सरल भाषा में मराठी में कहा जाए तो कर्त पण वर्त नहीं, सुना तो बहुत है परंतु अनुभव जो देखा गया कि जीव मुक्त हो नहीं पाता है, क्योंकि निरंतर संसार में रहता है, निरंतर तीन गुणों के बीच में रहता है। जिस तरह से भगवान और प्रकृति कभी अलग नहीं होते, निकटस्थे माया तारे झापटिया धरे, माया सदैव श्री कृष्ण के निकटस्थ रहती है, तो प्रकृति यह संसार की माया सदैव श्री कृष्ण के अधीन रहती है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की प्रकृति ये दोनों कभी विलग नहीं होते, वैसे ही माता देवती कहते कि प्रकृति और जीव भी कभी अलग नहीं होते। प्रकृति के बीच में जीव रहता है, निरंतर इन तीन गुणों से बनी प्रकृति के बीच में रहता है, तो अनुभव तो यह है कि लगभग सदैव साथ में रहने के कारण मुक्त हो ही नहीं सकता। एकदम सरल भाषा में कहा जाए माता देवहूति का प्रश्न मतलब संसारी लोगों प्रश्न है जो ये विचार करके बैठे हैं कि प्रभु जी हम तो इस संसार से मुक्त हो ही नहीं सकते, इस तरह जो धारणा है कि हमेशा संसार के बीच में तो संसार के प्रभाव में तो आई जाते हैं। तो कल भी हम कुछ भक्तों जब चर्चा कर रहे थे, हमने इस बात को कहा था कि यहां तक कि कृष्ण भावना अभ्यास में रहते रहते भी साधक में कुछ दोष बताए जाते हैं, उसमें से एक दोष जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स, स्वनिर्मित कुछ धारणाएं मन में बन जाती है और हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि प्रभु जी ये संसार तो भगवान की माया है और हम कौन है, हम तो घर गृहस्थी वाले, तो घर गृहस्थी वालों ने तो पतन का ठेका ही लेके रखा है कि हम हमेशा पतित ही रहेंगे, हमसे तो इतनी भक्ति होंगी नहीं, ना भगवान का हम अनुभव कर पाएंगे, ना भगवान को भी देख पाएंगे, और श्री भगवान से प्रत्यक्ष संवाद करना तो बहुत दूर की बात रही, भगवान कभी बात करेंगे नहीं, भगवान कभी दिखेंगे नहीं, भगवान कभी बोलेंगे नहीं, भगवान का अनुभव नहीं होगा और हम सदैव माया में ही रहने वाले हैं। तो यदि किसी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्य हम, जिसकी भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी प्रकार की अनुभूति करवाते हैं। भगवान तो तत्क्षण अनुभव करवाने के लिए तैयार है, परंतु जीव उस तत्क्षण अनुभूति के लिए तैयार नहीं रहता है। तो यदि कोई जो साधना कर रहा है, साधना करते समय मन में यह भावना यदि है कि नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा का श्रवण आदि कर रहा है, परंतु मन में भावना यह है कि हम तो संसार से मुक्त हो ही नहीं सकते, प्रभु जी आपकी बात और है, आप तो एकदम आसमान से टपके हुए हैं, हम तो इस संसार के मल में फंसे हुए हैं, तो हम तो निकल ही नहीं सकते। अगर मन में यह धारणा बन जाए तो निश्चित रूप से वह कभी निकल नहीं पाएंगे, कि भगवान विचार कर ले, इसने सोच ही लिया कि मैं निकलने वाला हूं नहीं तो फिर ये निकलेगा नहीं, और श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे कभी होंगी नहीं, तो फिर कृष्ण यदि एकदम समीप आ भी जाए तो कृष्ण फिर अपने आप पीछे चले जाते हैं कि मैं तो मिलने के लिए आया ही था। परंतु हमारी धारणा के कारण श्री कृष्ण स्वयं को रोक देते हैं। तो यह चार श्लोकों में माता देवहूति का प्रश्न का सार या तात्पर्य यही है कि किसी संसार में रहते तो व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता है, या कहा जाए तो इस संसार से मुक्त होना अत्यंत विरला ही है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए वहां शीर्षक दिया गया इन चार श्लोकों को जो माता देवहूति की जिज्ञासा है, द रेयरिटी ऑफ लिबरेशन, कि मुक्त होना सहज नहीं है, सभी मुक्त नहीं हो पाते, तो उसका मूल कारण यह है कि सबके मन में यह बैठा हुआ है, जैसे शब्द हम कहते हैं मुक्त होना चाहते भी नहीं है, मुक्त वे हो जो मुक्त होना चाहे। तो प्रथम पांच श्लोकों का भी शीर्षक जो दिया गया इस अध्याय में, तो वहां पर कहा गया द नीड ऑफ लिबरेशन, जिस वस्तु की आवश्यकता हो तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे संसार में जब धन की आवश्यकता की अनुभूति हो जाए तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आवश्यकता की जागृति हो, अवेयरनेस ऑफ नीड, कि संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ये संसार कष्टप्रद है, ये संसार हमारा नहीं है, ये अनुभव होना, तब साधन प्रारंभ किए जाते हैं। इसलिए भागवत में जब साधु संग गुरु आश्रय का वर्णन किया गया तो वहां पर शब्द का वर्णन, वहां शब्द लिखा गया तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्री उत्तम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तो गुरु के आश्रय का वर्णन किया गया, गुरु के गुणों का वर्णन किया गया, परंतु उसके प्रारंभिक शब्द का प्रयोग किया गया तस्मात तस्मात गुरुम प्रपद्येत। तस्मात शब्द का अर्थ होता है तब, तब ही साधु और गुरु के पास जाना चाहिए, सीधे कहा जाए तो तब का अर्थ क्या होता है। तो तब के अर्थ में फिर पूरा पहला उसका पूर्व भाग सुनना पड़ेगा। नव योगेंद्र जो उपदेश दे रहे हैं तो उस नव योगेंद्र उपदेश में उन्होंने भगवान की माया का वर्णन किया, भगवान की माया कितनी कठिन है, कितनी कष्टप्रद है, ये संसार का चक्र, और संसार के चक्र में कितने दुख और क्लेश है, और दुख और क्लेश का जब अनुभव होने लगे और जब उससे मुक्त होने का दृढ़ संकल्प जब आ जाए जिसको महाराज श्री परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जगत के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, इसको कहते हैं क्यूस मतलब क्यूस घिन आना मराठी में इतना क्यूस मतलब कीट क्यूस मतलब ना शब्द में हमेशा भूल जाता हूं कि घिन आनी चाहिए। हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंताम और जनतामसी, स्वयं साक्षात भगवान जिन्होंने इस जगत का सृजन किया, वे भगवान जब इस जगत का वर्णन किए तो क्या कहते हैं अवध्यम इमम लोकम, लोकम यह जगत कैसा है अवध्यम लोकम, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को श्रीमद् भागवत में। अवध्यम लोकम का अंग्रेजी में अनुवाद कृष्ण प्रभु अबॉमिनेबल वर्ल्ड, मतलब भगवान कहते हैं ये बहुत ही घृणास्पद ये जगत है, परंतु ये संसार अपना लग रहा है यह सबसे बड़ा रोग है, ये संसार अच्छा हमको लग रहा है, यही सबसे बड़ा। जिस प्रकार से गांव में वर्णन किया था, जब गांव में किसी व्यक्ति को सांप यदि डस लेता है तो सांप डस लिया तो जहर उसके शरीर में चढ़ जाता है, तो सबसे पहले पता किया जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में विष का प्रभाव चढ़ा है कि नहीं, जहर फैल गया है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, विष का प्रभाव तो नहीं, समाधि का प्रभाव जल्दी चढ़ जाता है कुछ भक्तों पे। कैसे पता किया जाए तो अलग अलग प्रकार के गांव के कुछ नुस्खे होते हैं, तो उसमें एक नुस्खा वो किया जाता है कि कड़वे नीम के पत्ते मुंह में रखे जाते हैं उस व्यक्ति के, उसको कहते चबाओ, तो कड़वा नीम का जो पत्ता होता है उसको जैसे मुख में रखेंगे तो स्वाभाविक है कड़वा नीम का पत्ता मुख में रखते हैं कड़वाहट लगती है, तो कड़वा नीम का पत्ता यदि मुख में रखा गया उस व्यक्ति के जिसके शरीर को सर्प ने दंशित किया है और कड़वाहट अनुभव यदि हुई उसे नीम के पत्ते की, मतलब समझना चाहिए कि जहर का असर हुआ नहीं है, जहर फैला नहीं है अभी, परंतु तो कड़वे नीम के पत्ते मुख में रख दिए जाए और कड़वाहट बिल्कुल न लगे, मतलब समझना चाहिए कि अब एक व्यक्ति मरने वाला है, मतलब जहर पूरी तरह से शरीर में फैल चुका है, उसका लक्षण होगा कड़वे नीम के पत्ते रखने पर भी कड़वाहट नहीं लगेंगी, वो नॉर्मल लगते हैं उसका स्वाद। तो वैसे ये जगत भी कड़वा है परंतु वो जब आपको मीठा लगने लगे मतलब समझना चाहिए अभी जहर फैल चुका है, जब ये संसार के जहर का असर निकलेगा तो उसका पहला लक्षण होगा कि आपको कड़वाहट अनुभव होंगी थोड़ी जगत की। अनुताप तुझे राहिले चिंतन झाला हा वमन संसार, इससे तुकाराम महाराज भी है यह अनुभव जब हो, जगत के प्रति हेय बुद्धि जब आने लगे, जगत के प्रति त्याज्य बुद्धि जब आने लगे, तब समझना चाहिए कि वास्तविक कुछ साधु संघ में बैठने का अधिकारी है या साधु संघ का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर ठीक है, मैं ये श्लोक तो छूट ही जाएगा फिर। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य यहीं से प्रारंभ की है कि जगत के प्रति जो अपनापन हो गया है बहुत अधिक, यही मूल कारण है बंधन का। अन्यथा देखा जाए तो जैसे ये ममत्व बुद्धि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये इतना ही संसार के प्रति अपनापन जो है, मेरा जगत, मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरी कार, मेरा मोबाइल, ये सब जो जनस्य मोह अयम अहम ममेति, ये इसे मोह कहा गया है, अहम ममेति, इस जगत के प्रति जो ममत्व भावना है। परंतु इसे संसार से निकाल कर जब भगवान और भगवान के भक्तों में की जाए, स एव साधुष्कृत मोक्ष द्वारम अपहर्तुम, तो उसी को मुक्ति कहा गया है। तो कैसे किया जाए, तो उसमें उसी बात को यहां पर वर्णन किया, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मई भक्त्या च श्रुत समृतया चिरम। तो लगभग पीछे से प्रारंभ करके फिर ऊपर आना पड़ेगा, श्रुत समृतया चिरम से प्रारंभ करके तीव्रया मई भक्त्या च, और फिर अमल आत्मना स्वधर्मेण, और फिर आएगा अनिमित्त निमित्तेन। 21 22 23 तीन श्लोक में कोई जीव कैसे मुक्त हो सकता है इसका वर्णन किया गया। हालांकि अत्यंत कठिन है ऐसा माता देवती कह रही, परंतु किस प्रकार से कठिन है जब ज्ञान और सांख्य आदि विधियों से जाने का प्रयास किया जाए, परंतु भक्ति मार्ग से यह अत्यंत सहज हो जाता है। तो उसके अलग अलग स्टेजेस बताई गई है, अगले इसमें फिर ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, उसका वर्णन 22 में किया गया। फिर 23 में कैसे संसार के कर्म को जब भगवान की ओर आरोपित किया जाता है तो ये कर्म ही मुक्ति का कारण बन जाते हैं, उसको 23 में बतलाया गया। तो सर्वप्रथम यहां पर अनिमित्त निमित्त स्वधर्म अमल आत्मना, तो प्रारंभ किया गया इसको कि कैसे संसार का बंधन, तो सर्वप्रथम निष्काम भावना से जब कार्य किए जाए, निष्काम भावना से अर्थात निरंतर प्रत्येक कार्य जब आपकी आंख खुलती है, आंख खुलने से लेकर आंख जब तक बंद हो, जितने कार्य आप करते हैं प्रातः क्रिया से लेकर अपने अपने विभिन्न स्वभाव के अनुसार जो कार्य करते, प्रत्येक कार्य में भगवान को जोड़ना का अभ्यास जब किया जाए। दो बात एक वक्त सुन रहा था, पहला कि यह श्रद्धा विश्वास हो प्रत्येक क्षण प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक स्थान पर निरंतर श्री कृष्ण मेरे साथ है, यह भावना सदैव मन में कहा। तीन तीन बातें मैं सुना था, सुबह से लेकर शयन तक और शयन से जागरण तक कहा गया है कि तीन बातें यदि अच्छी तरह से हम जीवन में अभ्यास करें, अनिमित्त निमित्ते न इस गुण को अपने जीवन में सहज ला सकते हैं, तो प्रथम वहां पर बतलाया गया है कि यह दृढ़ विश्वास और संकल्प पुनः पुनः अपने आप को स्मरण दिलाना चाहिए। यहां तक कि संकल्प कुछ अगर स्मरण दिलाना, उसके लिए कई भक्त क्या करते, उसको लिख कर रख लेते अपने पास, छोटा सा कुछ कुछ कार्ड होता है उसमें लिख कर रखते हैं। तो सर्वप्रथम इस बात को बतलाया गया कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में, सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण मेरे साथ है। यह बात वहां पर कही गई कि सर्व शक्तिशाली, सर्व सामर्थ्यशाली जो प्रभु है, भगवान है, वे निरंतर मेरे साथ रहते हैं। यह भावना सदैव मन में रहे। दूसरा कि अखंडित रूप से निरंतर जो प्रभु मेरे साथ में है, वो निरंतर मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। यह वाक्य को लगभग कंठस्थ करके रखना चाहिए, प्रातः काल उठते बराबर स्मरण करना चाहिए और दिन में कई बार इसे देखते रहना चाहिए। प्रथम, निरंतर श्री कृष्ण मेरे साथ है। दूसरा कहा गया, निरंतर श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर है। और तीसरा वाक्य वहां पर कहा जाता है कि यह निश्चय कर ले कि प्रत्येक क्रिया करते समय यह क्रिया मैं श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं। हालांकि सर्वसाधारण क्रिया भी हो सकती है, उठते बराबर हम ब्रश कर रहे हैं समझ लीजिए, परंतु उसमें भी अगर यह वाक्य मन में स्मरण करते हुए किया जाए कि यह भी कृष्ण के लिए कर रहा हूं, हालांकि उसका कोई कनेक्शन कभी लगता नहीं है किसी कृष्ण से, परंतु आवश्यक जो है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे, यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि दास यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, यत करोषि मदर्पणम्, यदश्नासि मदर्पणम्, यज्जोषि मदर्पणम्। चौथा क्या, यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत, पहले ददासि है ना,